ಓಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ತೋ ಅಭಿ ಪಾಂಚವಿ ನೋಟ್, ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಪಾಂಚವಿ ನೋಟ್ ಬಜಾ ರಹೇ ಮುರಳಿ ಕಿ, ತೋ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಗೋಪಿಯಾಂ ಉಸ್ ಸಮಯ ಕೋಯಿ ಗೋಪಿ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಸ್ತನ್ಪಾನ ಕರಾ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಅಪ್ನೆ ಪತಿ ಕೋ ಖಾನಾ ಖಿಲಾ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಪತಿ ಕೆ ಚರಣ ದಬಾ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಸಸುರ ಕೋ ಖಾನಾ ಖಿಲಾ ರಹೀ ಹೈ, ಸಾಸು ಕೋ ಖಾನಾ ಖಿಲಾ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಗಯ್ಯಾ ಕೋ ಚಾರಾ ಖಿಲಾ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ದೂಧ ಗರಂ ಕರ ರಹೀ ಹೈ ಮಿಠಾಯಿ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಐಸೆ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಗೋಬರ್ ಸಾಫ್ ಕರ ರಹೀ ಹೈ, ಗೋಶಾಲಾ ಮೇ ಕಂಡೆ ಬನಾ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಝಾಡು ಲಗಾ ರಹೀ ಹೈ, ಐಸೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಅಪ್ನೆ ರೋಜ್ ಕೆ ಕಾಮ ವೋ ಕರ ರಹೀ ಹೈ. ಏಕ ಬಹುತ್ ಮಜೆದಾರ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ ಕಿ ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಗೋಪಿಯಾ ಶೃಂಗಾರ ಭೀ ಕರ ರಹೀ ಥಿ ಶಾಮ್ ಕೆ ಸಮಯ ಪೆ, ತೋ ಶೃಂಗಾರ ಜೊ ಕರ ರಹೀ ಥಿ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಬ್ ಉಲ್ಟಾ ಫುಲ್ಟಾ ಕರ ದಿಯಾ, ಪಾಯಲ್ ಜೊ ಹೈ ಹಾಥ್ ಮೇ ಪಹನ್ ಲಿಯಾ, ಕಾಜಲ್ ಜೊ ಹೈ ಪೈರ್ ಮೇ ಲಗಾ ದಿಯಾ, ಔರ್ ಗಲೆ ಕೆ ಮಾಲಾ ಕಮರ್ ಮೇ ಪಹನ್ ಲಿ, ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಕಪಡಾ ಪಹನಾ, ಔರ್ ಐಸೆ ಪಾಗಲೋ ಕಿ ತರಹ ಭಾಗನೆ ಲಗಿ ವೋ. ಏಕ ಹೋ ಗ್ಯಾ, ಔರ್ ಜೋ ದೂಧ ಉಬಲ್ ದೇ ರಖಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ಉಬಲ್ತೆ ಹೀ ಛೋಡ್ ಕೆ ಜಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೇ ಗಯಿ, ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಸನ್ ಬಾಂಧ ಕರ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಬಿಸ್ತರ ಪೆ ರಖಾ ಔರ್ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೇ ಗಯಿ, ಪತಿ ಕೋ ಖಾನಾ ಖಿಲಾಯ ತುರಂತ ವಹೀಂ ಸೇ ಭಾಗ ಗಯಿ, ಕಿಸಿ ಪತಿ ಕೆ ಪೈರ್ ದಬಾ ರಹೀ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೇ ಗಯಿ. ತೋ ಏಕ ಬಡೀ ಮಜೆದಾರ ಕಹಾನಿ ಹೈ ಉಪರ್, ಯೇ ಸಬ್ ಕ್ಯೂಂ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಯೇ ಸಬ್ ಮುರಳಿ ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಸೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಮುರಳಿ ಕಾ ಸ್ವರ ಜೋ ನಾ ಉಸ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಗೋಪಿಯಾಂ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ವೋ ಕೈಸೆ ಕರ್ತಿ ಹೈ ವರ್ಣನ್ ಕಿ ಯೇ ಮುರಳಿ ಜೋ ಹೈ ನಾ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಛೇದ ಹೈ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಹೃದಯ ಕೆ ಅಂದರ್ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ರಸ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಜೋ ಯೇ ಜೋ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ರಸ ಜೋ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೈ ಹೃದಯ ಕಾ, ವೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಹೋಟೋ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ವೋ ರಸ ಮುರಳಿ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭರ ದೇತೆ ಹೈ ಛೇದ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ, ಔರ್ ಜಬ್ ವೋ ಮುರಳಿ ಬಜಾತೆ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ರಸ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಹವಾ ಸೇ ಉಡತೆ ಹುಯೆ ಗೋಪಿಯೋ ಕೆ ಕಾನೋ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಗೋಪಿಯೋ ಕೆ ಕಾನೋ ಸೇ ಹೃದಯ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಗೋಪಿಯೋ ಕೋ ಪೂರಾ ಅಪ್ನಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಹೋ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೂ ದೇ ಆರ್, ವೋ ಔರತ್ ಹೈ, ಆದಮಿ ಹೈ, ಬೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಹೈ, ಗಾಂವ್ ಮೇ ಹೈ, ಘರ್ ಮೇ ಹೈ, ಕುಚ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ, ಬಚ್ಚಾ ಹೈ, ಪತಿ ಹೈ, ಸಬ್ ಕುಚ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಭಾವ ವಿವರ್ತಾ ಐಸಿ ಹೈ, ಭಾವ ವಿವರ್ತಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಹೂ ಹೈ ಮಾಯ್, ವೋ ಪಹಚಾನಿ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ, ಐಸಿ ಉನ್ಕಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅವಸ್ಥಾ ಹೋ ಗಯಿ. ತೋ ಏಕ ಕಹಾನಿ ಆತಿ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ, ಬ್ರಜ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಹೈ ಯೇ. ತೋ ಏಕ ಗೋಪಿ ವೋ ಅಭಿ ಸುನ್ ರಹೀ ಹೈ, ಅಭಿ ತಕ್ ತೋ ಅಚ್ಛಿ ಥಿ ವೋ, ಗಾಯ ಕಾ ಘಾಸ್ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ರಖಾ ಹೈ ಗಾಯ ಕೋ ಖಿಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಸಸುರ್ ಜಿ ಬೋಲ್ತೆ ಅರೆ ಬಹು ಸುನಾ ತುಮ್ನೆ ಥಾಲಿ ಲಗಾ ದೇ ಮುಜೆ ಮೇರಾ ಪ್ರಸಾದ ಖಾನಾ ಹೈ, ತೋ ಘಾಸ್ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ರಖಾ ಉಸ್ನೆ ಘರ್ ಪೆ ಉಧರ್ ರಖಾ, ವೋ ತುರಂತ ರಸೋಯಿ ಘರ್ ಮೇ ಗಯಿ, ಸಸುರ್ ಕಾ ಥಾಲಿ ಬನಾಯಾ, ರೋಟಿ ಸಬ್ಜಿ ಚಾಲ್ ದಾಲ್ ಚಾವಲ್ ಜೋ ಭೀ ಕುಛ ಹೈ ಗಾಂವ್ ಕಾ, ಛಾಸ್ ದಹಿ, ಉತ್ತನೆ ಮೇ ಮುರಳಿ ಕೆ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿ ಪಡಿ. ತೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಉಸ್ನೆ, ಸಸುರ್ ಕೆ ಥಾಲಿ ಮೇ ಘಾಸ್ ರಖಾ, ಔರ್ ಗಾಯ ಕೋ ಜಾಕರ್ ವೋ ರೋಟಿ ಸಬ್ಜಿ ವಾಲಾ ಥಾಲಿ ಖಿಲಾ ದಿಯಾ. ತೋ ಸಸುರ್ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಬಾಬಡಿ ಹೈ ಗಯಿ ತೂ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಖಿಲಾ ರಹೀ ಹೈ ಮುಜೆ ತೂ, ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಭಾನ್ ಹೈ, ಉಸ್ಕೋ ಕುಚ ಪತಾ ಹೀ ನಹೀ. ಇಸ್ ತರಹ ಸೇ ಬಹುತ್ ಅದ್ಭುತ ಬಾತೇ ಹುಯಿ, ಔರ್ ಗೋಪಿಯಾಂ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕುಚ ಲೋಗ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಗೋಪಿಯೋ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಮಿಲ್ನೆ ಕಿ ಬಡಿ ಇಚ್ಛಾ ಥಿ, ಗೋಪಿಯೋ ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಭಾವನಾ ಥಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ವಗೇರೆ ವಗೇರೆ, ಲೇಕಿನ್ ಗೋಪಿಯೋ ಕೋ ಮನ್ ಮೇ ಕೇವಲ ಏಕ ಹೀ ಭಾವನಾ ಥಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಸಂತುಷ್ಟ ಕರ್ನೆ ಕಿ, ಔರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುರಳಿ ಸೇ ಹಮೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪ ಸೇ ನಾಮ ಲೇಕರ್ ಪುಕಾರ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಬುಲಾ ರಹೇ ಹೈ, ತೋ ಉನ್ಕೋ ಜಾಕರ್ ಸಂತುಷ್ಟ ಕರ್ನಾ ಹಮಾರಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ವೋ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ, ವೋ ಕುಚ ಕಾಮ ಭಾವನಾ ಸೇ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋಕರ್ ನಹೀ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ, ಗೋಪಿಯೋ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕೋಯಿ ಕಾಮ ಭಾವನಾ ನಹೀ ಥಿ. ಯಹಾಂ ತಕ್ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಕಿ ಮುರಳಿ ಕಿ ತಾನ್ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಗೋಪಿಯೋ ಕೋ ಸುನಾಯಿ ಪಡಿ, ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಗೋಪಿಯಾಂ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಭಜನ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಪ್ರೇಮ ಮೇ ಇತನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥಿ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಬಂಧನ್ ನಹೀ ಥಾ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್, ಸಬ್ಕೋ ಪ್ರೇಮ ಹೈ, ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾವನಾ ಹೈ, ಸಬ್ ಕುಚ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಹೀ ಶಾಲೀನ್ ಕುಲೀನ್ ಮಾತಾಯಿ ಥಿ, ಕನ್ಯಾಯಿ ಥಿ, ಮಾತಾಯಿ ಜೋ ಭೀ ಥಿ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ನಹೀ ಥಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇ. ವಹೀ ಲೋಗ್ ಜಬ್ ನಿಕಲೆ ನಾ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಘರ್ ಕೆ ಲೋಗ್ ಉನ್ಕೋ ರೋಕ್ ನಹೀ ಪಾಯೆ, ಕೌನ್ ರೋಕ್ನೆ ವಾಲೆ, ಯಾ ತೋ ಪಿತಾ ಹೈ ಅಗರ್ ಕನ್ಯಾ ಹೈ ತೋ, ಶಾದಿ ಶುದಾ ಹೋಗೈ ತೋ ಪತಿ ಹೈ, ಔರ್ ಅಗರ್ ಜಾದಾ ಬುಜುರ್ಗ ಹೈ ತೋ ಬೇಟೆ ಭೀ ಘರ್ ಪೆ ಹೈ, ತೋ ಕುಚ ಲೋಗೋ ಕೋ ಪತಿ ನೇ ರೋಕಾ, ಕುಚ ಲೋಗೋ ಕೋ ಪಿತಾಓ ನೇ ರೋಕಾ, ಕುಚ ಲೋಗೋ ಕೋ ಭಾಯಿ ನೇ ಭೀ ರೋಕಾ, ಕುಚ ಲೋಗೋ ಕೋ ಪುತ್ರ ನೇ ರೋಕಾ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಲೋಗ್ ಸೀದೇ ಜಾತೆ ಹೀ ಗಯೆ ಔರ್ ಉನ್ಕೋ ರೋಕ್ ಹೀ ನಹೀ ಪಾಯೆ ವೋ. ವೋ ಗೋಪಿಯಾಂ ಥಿ ಜೋ ಪೂರ್ಣತಃ ಕಾಮ ವಾಸನಾ ಔರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಥಿ, वो सीधे बिना अवरोध जा सकी। अवरोध तो सबको हुआ लेकिन वो पार करके चली गई। और जिनको कुछ 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 आसक्तियाँ थी, ऐसा नहीं कि वो ऑर्डिनरी भक्त थी, वो भी बहुत एडवांस भक्त थी, लेकिन कुछ कुछ ट्रेस उनके मन में था आसक्तियों का, वो रोकी गई, मतलब पिता ने या पति ने उनको रोक लिया और घर में कड़ी लगाकर कमरे में बंद कर दिया। तो उनको इतना विरह की अग्नि का अनुभव हुआ, इतना जलन हुई विरह की अग्नि की, तो उस विरह की अग्नि में उनका बचा कुचा आसक्ति भी जल कर खत्म हो गया और उन्होंने अपना जो मर्त शरीर है ना वहीं छोड़ दिया उसको। वो मरे नहीं, दे डिड नॉट डाई, वो शरीर को वहां छोड़ के आत्मस्वरूप में वो वहां से रास में प्रवेश कर गई। मतलब भगवान ने ये न किन प्रकारे सभी गोपियों को योग्य बना दिया, जो थोड़ी बहुत योग्य नहीं थी उनको रुकावट लाया, बंद कर दिया गया, जलने लगा वो विरह में, वो सब करके उनको शुद्ध करके उनको भी आत्मस्वरूप में ले लिया और बाकी तो ऐसे ही सदैव गई थी वहां पर। जब लौट के आई तो जो एडवांस गोपियां पहले से जा चुकी थी वो अपने शरीर में लौट के आई और दूसरी जो आई वो आत्मस्वरूप में आई, अपने शरीर में जहां पर कैद था वहां पर प्रवेश किया और नॉर्मली बाहर आ गए। भाई रात भर उसको कैद रखा था, सुबह खोल दिया तो आ गई बाहर। किसी पति को पिता को किसी को पता नहीं कि क्या हुआ, और जो रोक रहे थे और रोकते रोकते भाग गई गोपियां, तो उनको गुस्सा आना नेचुरल ना, आने दो कल देखता हूँ उसको। जब दूसरे दिन सुबह आई निकल के तो किसी को याद भी नहीं था कि ये रात को क्या हुआ, योग माया के प्रभाव से सभी सब भूल गए घर में क्या हुआ था। भगवान ने उनको 432 कोटि साल एक रात के अंदर घुसा के रास का आनंद दिया। ऐसा ये पांचवे मुरली के स्वर का प्रभाव है। आचार्य यहाँ लिखते हैं कि मुरली भी तीन प्रकार की होती है, एक तो संगमरमर की होती है, मार्बल की होती है, दूसरी गोल्ड की होती है और तीसरी बैम्बू की होती है। बैम्बू की सबसे नेचुरल होती है लेकिन भगवान गोल्ड की मुरली भी यूज़ करते हैं। हाँ आप थोड़ा लेट आए, वेणु मुरली और बंसी, ये तीन प्रकार के फ्लूट्स है भगवान की और वो तीन टाइप से बनती है, बेसिकली बैम्बू से बनती है लेकिन गोल्ड से और मार्बल से भी बनती है। ठीक है, अभी आठवीं नोट, अभी मैंने आपको सेवेंथ के बारे में पहले बता दिया, अभी सिक्स के बारे में बताता हूँ। सिक्स में जो सेकंड इफेक्ट है वो क्या बताया था मैंने बताओ, एक ही नोट के एक ही स्वर के दो परिणाम थे, ओनली वन, दो परिणाम थे। नहीं शरद ऋतु वो पाँच छठवें वाले हैं, नहीं शरद ऋतु जो है ना वो छठा है, छठा छठे स्वर का दूसरा परिणाम क्या है, पत्थर पिघल जाते हैं। तो ये पत्थर पिघलने की बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ऐसी है कि सचिद हमारे सनातन गोस्वामी जी वृंदावन की गोवर्धन के पर्वत की दीर्घ परिक्रमा करते थे, 40 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर्स, हम लोग 22 किलोमीटर की करते हैं और कुछ ब्रजवासी 7-7 किलोमीटर की करते हैं, छोटी और बड़ी, एक 7 और एक 15, वो मानसिकंगा के पास घूम कर वापस आ जाते हैं, वो छोटी परिक्रमा बोलते हैं। और बड़ी मतलब जो हम लोग करते हैं वो पूरा पुजरिका लौटा करके राधा कुंड करके पूरा आ जाते हैं। और ये और एक रास्ता है जो आनियोर गांव है ना वहाँ से लेफ्ट टर्न लेता रास्ता और आगे जाकर पूरा बड़े हाईवे में मिलता है, फिर पेठा गांव, चंद्र सरोवर, चतुर्भुज नारायण का मंदिर कवर करके वापस वृंदावन में पुछरी के पास आ जाता है। उसमें ही कुछ 18 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, तो 22 और 18 कितने हो गए, 40 किलोमीटर्स। वो परिक्रमा हमारे सनातन जी गोस्वामी महाराज रोज करते थे। तो जब जवान थे तब शुरू किया था तो 70 साल की आयु होगी उनकी, अभी जवानी में फास्ट चलते थे, अभी धीरे धीरे चलते हैं। तो कृष्ण को भी दया आ गई उनको देखकर, इतना निश्चय उनका, इतना नियम, इतनी साधना। तो कृष्ण बालक बनकर उनके साथ में आए, ग्वाल बाल बनकर, बोलते बाबा बाबा क्यों चल रहे हो इतना, अरे इतने बूढ़े हो गए हो, इतने दिन चले नहीं बेटा, तो मुझे तो चलना ही है, मेरा तो रोज का नियम है, मुझे तो चलना पड़ेगा। नहीं बाबा बहुत परिक्रमा लगा दी आपने, आपको जरूरत नहीं लगाने की, पूरा सिद्ध हो गए आप। तो ये सब बातें चलते चलते रुक रहे हैं, वो चलते रहे, बेटा भी चल रहा है, बच्चा भी चल रहा है, वो भी चल रहे हैं। बहुत देर तक झिकझिक हुई, बाबा मत करो, बाबा नहीं करूंगा, करना चाहता हूँ करके करके, फिर बालक समझ गया कृष्ण ये तो नहीं मानने वाले बाबा, तो बालक चला जाता है। बालक जाकर कृष्ण ने पर्वत पर खड़े हो गए, गोवर्धन के पर्वत पर, और मुरली निकाली और छठा नोट बजाया, तो क्या हुआ, जिस पत्थर पर खड़े हैं वो भी पिघलने लगा, बाकी के भी पिघलने लगे। बहुत देर बजाया, तब तक गाय भाग के आई, आवाज़ सुनकर मुरली की, उसने भी पत्थर पर पाँव दिया, वो जो पिघल रहा है। लकोटी जो है ना गाय चराने की, अभी हाथ दोनों बिजी है तो लकोटी ऐसे कमर पर चिपका के रखी है, उसका भी जो कोना वहां पर चिपका है वो भी अंदर घुस रहा है। इस प्रकार से भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया, फिर पिघलना बंद हो गया। लेकिन जो पिघला हुआ पत्थर है जिस पर उनके पैर के निशान है, एक पूरा है एक आधा है, लकुटी के निशान भी है, गाय के खुर के निशान भी है, सब है उसके अंदर। वो उखाड़ा भगवान ने वहां से, अभी वो लेकर वापस बालक बने और भाग रहे हैं। बाबा को कैच कर लिया, बाबा बाबा लो ये शालिग्राम, ये गोवर्धन शिला ले लो, इसकी परिक्रमा करो, फिर परिक्रमा का पूरा लाभ मिलेगा। बाबा का सुन रहे, तो कृष्ण भगवान ने वो शिला लेकर बाबा के साथ पूरी बची परिक्रमा कर ली। फिर जो चक्रेश्वर महादेव पे अपने निवास स्थान पे आए ना, उधर बालक शिला लेकर वापस, मतलब उसके साथ ही चल रहा है ना, वो पूरा घूम के आया और घर पे छोड़ दी शिला। बोले बाबा मेरी बात सुन लेना, इसकी परिक्रमा कर लेना, परिक्रमा पूरी हो जाएगी। बाबा बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मतलब नहीं करना है उनको। और बाबा थके हुए सो गए। रात को कृष्ण में वही बालक स्वप्न में आया उनके। वो बालक टर्न इंटू कृष्णा, बोले मैं जो आपके साथ में आया था सुबह वो मैं ही हूँ, और मैं आपको भी आदेश देता हूँ कि अभी आप बस करो आपकी परिक्रमा, और इस शिला की 4 बार परिक्रमा करो, आपको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा, आपका नियम नहीं टूटेगा, आपको श्रम नहीं होगा, मेरी भी इच्छा पूरी होगी कि आपको अभी श्रम नहीं देना है। अभी जब कृष्ण को देखा तो उन्होंने उनकी आज्ञा को सर पे रखा, और उस दिन से बाहर नहीं गए वो, अपने ही कुटी में परिक्रमा लगाने लगे। फिर वो केवल पूर्णिमा के दिन परिक्रमा लगाते थे, महीने में एक बार। तो ये जो शिला है, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का, जब एक पूर्णिमा आई तो गुरु पूर्णिमा आई, तो गुरु पूर्णिमा का दिन वो सभी ब्रजवासी उनके साथ में चलते थे, बाकी दिन वो अकेले चलते थे पहले, फिर उसके बाद पूर्णिमा को अकेले चलते थे। उसके बाद में साल में एक बार पूरे ब्रजवासी उनके शिष्य बने हुए थे, उनके साथ में परिक्रमा करते थे गोवर्धन की लंबी वाली। तो एक गुरु पूर्णिमा को मेरे ख्याल से 1570 या 1580 के समय, आई डोंट नो एग्जैक्टली, याद नहीं रहा है, 1560 शायद हो सकता है। उस साल के गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, सब लोग आ गए उनके पास परिक्रमा करने, तो वो ध्यान में बैठे हुए थे, ठीक है ध्यान में बैठे, तो कुछ देर बाद में उठेंगे। बहुत देर तक इंतजार किया, नो रिस्पांस, बहुत बुलाया नो रिस्पांस। तो फिर बाद में जब भी उनको जाकर एक ही व्यक्ति ने ऐसा ढाड़स करके उनको स्पर्श किया तो धाड़ करके गिर गए वो, मतलब सुबह ही वो अपना शरीर छोड़ चुके थे ध्यानस्थ अवस्था में। फिर उनको लेकर, उनका डेड बॉडी लेकर लोगों ने कंधे पर लेकर पूरा परिक्रमा किया, और फिर वो जो शिला है वो बॉडी लेकर आए वृंदावन में, मदन मोहन जी के नीचे उनको समाधि दिया, और शिला जो है उसमें जीव गोस्वामी प्रमुख थे गौड़ी संप्रदाय के, वो शिला उनके मंदिर में चला गया। तो वो शिला जो है वो भगवान के मुरली के 6ठे स्वर का परिणाम स्वरूप आपके सामने है। ऐसे भगवान ने कई जगह पर मुरली बजाई है, और जहां जहां खड़े होकर मुरली बजाई है वहां वहां चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। नंदगांव में ऐसा एक चिन्ह है, नन्हा सा चिन्ह है बालक कृष्ण का, जो चिन्ह उत्पन्न हुआ मुरली बजाने के बाद में, तो गोपियां जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो वो चिन्ह को देखकर रोया करती थी बैठकर नंदगांव में। चरण पहाड़ी नाम का एक काम्य वन में स्थान है, वहां पर एक दिन सूरज को ढलने का समय हुआ था, वो काम्य वन जो है वो कृष्ण के गौचारण का बहुत प्रिय स्थान है। ही लव्स टू हर्ड काउज देयर। तो शाम का समय हो रहा था, यहाँ पर गोपियाँ व्याकुल हो रही थी कि भाई कब सूरज ढलेगा, हमारा नंबर कब लगेगा, क्योंकि उनको तो वेट करना है ना अंधेरे तक, और ग्वाल बाल थोड़े परेशान हो गए थे कि हमारा तो समय समाप्त हो रहा है अभी। तो कृष्ण अचानक गायब हो गए, क्योंकि गोपियों की जो विरह की भावना थी वो उनको व्याकुल कर गई, तो अचानक गायब हो गए। एक पर्वत के शिखर पर गए, वो पर्वत शंकर जी का रूप है अभी भी है, वो ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने मुरली बजाई 6ठी नोट। जब मुरली बजाई तो वो जिस पर खड़े थे ना वो पत्थर ही पूरा पहाड़ पिघलने लगा ऐसा पूरा, और भगवान ऐसे अंदर चले गए उसके पैर उसके। तो उन्होंने ग्वाल बाल अचानक कृष्ण कहाँ गए इसलिए दुखी हो गए थे, और गोपियाँ कृष्ण कब आएंगे इसलिए व्याकुल हो रही थी। तो उन्होंने मुरली बजाकर दोनों को सिग्नल दिया, डोंट वरी मैं यहीं हूँ, और गोपियों को बोला डोंट वरी मैं अभी आने वाला हूँ। उस बीच में वो चरण चिन्ह निर्माण हो गया। आज भी कामेवन में पहाड़ पर जाएंगे आप तो वहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह हैं, बहुत सुंदर चरण चिन्ह हैं। लेकिन ये जो शिला है जो दामोदर मंदिर में है वो बड़ी विशाल है, वो बिग, बड़े चरण चिन्ह हैं उसके ऊपर, वो थोड़े छोटे से हैं। फिर एक बलराम का चरण चिन्ह है, वो उधर काम्यवन में है, कहाँ पर है, भोजन थाली के पास, जब व्योमासुर का और भगवान का युद्ध हो रहा था, कृष्ण भगवान का, तो पृथ्वी वो भयंकर युद्ध देख कर ना कांप रही थी। तो उस समय पृथ्वी कांप रही थी, तो भगवान ने अपना दुपट्टा ऐसे छोड़ दिया जमीन पर उनको सिर करने के लिए, और अपना बाएं पर का अंगूठा ऐसा दाब दिया पृथ्वी पर, पृथ्वी को सिर करने के लिए, डोंट वरी मैं हूँ, आप चिंता मत करना। तो वो चरण चिन्ह बलराम जी का उधर है। छोटी बठैन बड़ी बठैन नाम के दो नंदगांव के आगे गांव हैं, कहते हैं वहाँ पर कृष्ण बलराम का झगड़ा हो गया। कृष्ण का अपना ग्रुप था गायों का, बलराम का अपना ग्रुप था, क्योंकि वो झगड़ा करते ना बच्चे, हाँ मुझे नहीं दिया गाय, तुमने उसको ही दिया, दोनों को इक्वल गाय दिया था उन्होंने, तुम भी चराओ तुम भी चराओ। तब छोटी बठैन बड़ी बठैन के बीच में आने के पहले झगड़ा हो गया, तो कृष्ण भगवान ने निर्णय लिया कि आज मैं तुम्हारे साथ गाय नहीं चराऊंगा, तुम अपना मार्ग देखो मैं अपना मार्ग देखता हूँ। तो बलराम जी अपने झुंड लेकर बड़ी बठैन नाम के गाँव गए, ये छोटी बठैन नाम के गाँव गए, और दोनों ने अपना अलग अलग विश्राम बनाया, अलग अलग खाना खाया, अलग बैठ गए, और बठैन मतलब बैठ गए विश्राम करने के लिए। तो वो गांव में दोनों भैयाओं के बहुत चरण चिन्ह हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि रोज़ झगड़ा किया, कभी एक बार झगड़ा किया, लेकिन बाद में तो वहाँ खेलने गए ना रोज, जहाँ जहाँ मुरली बजाए वहाँ वहाँ भगवान के, ऐसे कहते हैं हजारों लाखों चरण चिन्ह थे, धीरे धीरे काल के प्रभाव से वो नष्ट होते जा रहे हैं। वो सारे चरण चिन्ह भगवान ने मुरली बजाकर जो पत्थरों को पिघलाया उसकी वजह से बने। भगवान की मुरली का इतना प्रभाव है कि बार बार मैया जो है ना वो भगवान को जूता पहनने का प्रयास कर रही है। उसका भाव कैसा है कि कहीं कांटे लग जाएंगे, कल नहीं लगे तो आज नहीं लगेंगे, आज लग सकते हैं, तो उनके मन में बहुत चिंता है उसकी। तो एक दिन कृष्ण से बात करती है वो तो गोपाष्टमी वाली बात खत्म हो गई, फिर भी कोशिश जारी है। तो फिर कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, मुझे ना पूर्णमासी ने कहा है कि ये वृंदावन जो है ये वृंदा देवी का स्वरूप है स्वयं, तो मैं वृंदा देवी जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवता है उसके छाती पर जूता कैसे पहन के जा सकता हूँ, वैसे भी चल रहा हूँ और आप पहन रहे बोल रहे भी जूता पहन के चलो उसका अपमान होगा, ऐसे मुझे पूर्णमासी ने कहा है। ताकि इट्स इजी ना, आई एम नॉट सेइंग इट, समबडी एल्स सेइंग इट, यू गो एंड वेरीफाई विथ हर। तो मैया को वैसे भी चिंता है, तो वह जाती है पूर्णमासी के पास, वो तो बड़े गोपियों के गुरु है, तो पूर्णमासी को पूछती है आपने बताया था क्या उनको, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ही बताया था, लेकिन मैंने जो बताया था वो बालक को समझाने के लिए बताया था, लेकिन सच कारण ये नहीं है, सच कारण ये है कि तुम जाके कृष्ण के चरण चिन्हों को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि हर चरण चिन्ह की बॉर्डर गोल्डन है, और चरण चिन्ह जहां पड़े हुए हैं वहां बहुत सारे पौधे वगैरह आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, कृष्ण ने जूता पहनेंगे और उनके तलवों का स्पर्श भूमि पर नहीं होगा तो वृंदावन भूमि में उपज नहीं होगी, इनके चरण चिन्हों का जो स्पर्श है वो वृंदावन की भूमि को उपजाऊ बना रहा है। ये कवि कर्णापुर ने बताया है, कौन सा किताब है उनका, वो कवि कर्णापुर का कवि कर्णापुर का एक ग्रंथ है कृष्ण कथा, कृष्ण कर्णामृत, वो कृष्ण कर्णामृत में उन्होंने ये बताया हुआ है। तो मैया को विश्वास नहीं हुआ, तो मैया ने खुद जाके देखा, हर एक चरण चिन्ह के पास तो गई, तो एक तो उन्होंने दिव्य सुगंध का अनुभव किया, एट एवरी फुट स्टेप एट एवरी फुट प्रिंट देर वॉज अ फ्रेगरेंस, और हर फुट प्रिंट की गोल्डन एफलजेंट बॉर्डर, और चरण चिन्ह के अंदर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। तो फिर मैया ने बोला अच्छा है ठीक है, जहाँ तक जमीन का सवाल है मैं समझ सकती हूँ कि मैंने चरण चिन्ह देखे हुए हैं और उसके अंदर से उपज हो रही है और कल्याण हो रहा है, सुगंध आ रहा है, बट पत्थर पहाड़ का क्या? तो अरे तुमको वो भी समझ में आएगा। तो एक दिन कृष्ण के मुंडन का समय था, हाँ बच्चों का मुंडन करते ना, तो कृष्ण का मुंडन का विधि का निर्णय लिया गया। तो वो मुंडन का विधि का वेन्यू किधर था मालूम है किसी को? केदारनाथ, जो ब्रज के अंदर केदारनाथ है ना, ब्रज के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री और मानसरोवर कैलाश सब कुछ है एक जगह पर, काम्यवन के आगे 15 किलोमीटर जाएंगे तो ये सारे तीर्थ स्थान वहाँ प्रकट हो गए हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग जो भी हिमालय में सब कुछ है उधर। तो उसमें केदारनाथ बना हुआ है, तो केदारनाथ में उनका वेन्यू था कि इधर हमारे बालक का मुंडन करना है। तो जब सब लोग निकले सामान लेके केदारनाथ जाने के लिए, तो कृष्ण बलराम बच्चे के से भाग भाग के पहाड़ चढ़ के आगे चले गए। तो मैया को टेंशन था ना, कह रही पत्थर कम से कम जमीन पे तो पता है मुलायम जमीन है, पत्थर तो सख्त होते हैं। तो पूर्णमासी ने दिखाया यशोदा को कि जैसे ही ये पत्थर पर या पहाड़ पर चरण रखता है तो पहाड़ उस जगह पर मक्खन जैसा मुलायम हो जाता है इनके पैर के लिए, फिर सख्त होता है, फिर पैर रखते ही मुलायम होता है। तो जहां जहां मुलायम होकर पैर रखते हैं उधर चरण चिन्ह निशान बनते हैं। तो ये तो भाग नहीं पाई बालक जैसी, लेकिन जब पीछे पीछे गई देखा तो हर उधर केदारनाथ के पहाड़ी पर चरण चिन्ह बने हुए थे। और बच्चा दौड़ रहा है और देख रही है दूर से भी कि पत्थर वहां से एकदम मुलायम मुलायम हो रहा है और आगे आगे बढ़ रहे हैं बच्चे सब। तो ये कुछ पत्थर पिघलने का काम स्वयं पत्थरों ने किया, कुछ पत्थर भगवान के मुरली के आवाज से पिघले। ये ब्रजभूमि बड़ी अद्भुत भूमि है। और गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान के चरण कमल का दर्शन ब्रजभूमि के अंदर या और कहीं भी कोई कर लेता है तो उस व्यक्ति को दोबारा इस पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। यू डोंट हैव टू टेक बर्थ अगेन इफ यू विटनेस और यू ऑब्जर्व द फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्ण बलराम इन श्री वृंदावन और आउटसाइड ऑफ वृंदावन, वेर एवर देर इज फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा। और भी 7 मिनट बाकी है, कोई बात नहीं। 8वें नोट की एक कहानी बताता हूँ आपको। 7वां 6वां नोट तो हो गया, 7वां नोट जो है मैंने बताया, जैसे कृष्ण भगवान के जन्म के समय 6 ऋतु आकर उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, वैसा ही 6 ऋतु एक साथ में आते हैं जब भगवान का 7वां नोट बजता है। और उस समय सभी प्रकार के फूलों की खुशबू लेकर मंद मंद में वायु विहार करता है। 8वां नोट केवल राधा रानी के लिए है। जब भगवान राधा रानी को अकेले मिलने की इच्छा करते हैं तो कहीं दूर वन में जाते हैं और वो 8वां नोट बजाते हैं, उसमें केवल राधा राधा सुनाई पड़ता है और किसी को सुना नहीं पड़ता, केवल राधा को सुनाई पड़ता है। लेकिन आम तौर पर जब ये अकेले मिलने का टाइम आता है तो कृष्ण भगवान सुबल को अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं बुलाऊंगा ज़रूर लेकिन वो आ नहीं पाएगी, तो सुबल जाके फिर उसको लेके आते हैं, कुछ ट्रिक करते हैं, कुछ नुस्खा निकालते हैं। इसलिए हमेशा जब अकेले मिलने का समय होता है तो सुबल को लेके जाते हैं। तो ऐसे ही उन्हें एक बार कोकिला बन गए, राधा रानी की शादी अभिमन्यु से हो चुकी थी, अभी राधा रानी ससुराल में है, जावट में है, कोकिला वन 1 किलोमीटर दूर है। तो कोकिला वन में गए, व्याकुल हो गए थे राधा रानी के लिए, तो वहाँ जाकर 8वीं नोट बजाई और वहाँ जाकर राधा रानी अपने घर में बैठी हुई है, ससुराल सखियों के साथ बैठी हुई है, जब सुनती है मुरली की तान तो व्याकुल हो जाती है, तुरंत बाहर निकलने लगती है तो सासू जी बैठी हुई है दरवाजे पर, ए कहाँ जा रही हो, अरे पानी भरने जा रही हो, पागल हो गए कि अभी तो 10 मिनट पहले पानी भर के ले आई थी, पानी कहाँ खाली हो गया, सब मड़के भरे हुए, जाओ अंदर। तो दुखी हो जाती है क्योंकि जब मुरली की तान सुनती है 8वीं नोट की तो वो भी सब सुदबुद्ध हो जाती है कि पानी अभी लाया था, भरे हुए मटके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दे फॉरगेट एवरीथिंग, दे बिकम इलॉजिकल इनसेन। तो राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है कि उनको रोका गया, तो आंखें बहुत रोती है, अपनी घुटने में पाँव सर डालकर रोने लगती है, सब सखियाँ व्याकुल है, क्या करे क्या करे मैया तू, और यहाँ पर मुरली बजाए जा रहे हैं, समझा आपने मैंने आपको फ़ोन किया और आपने नहीं उठाया, फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा रिंग दूंगा, फिर आपने नहीं उठाया, फिर दोबारा 30 बार रिंग दूंगा। और कुछ लोग होते हैं बार बार देते रहते हैं, जब तक आप बोलते अरे बाबा मैं मीटिंग में हूँ तो वो आपको उठाने पड़ता है, बस बाबा कितनी बार फ़ोन किया, भाई मैं नहीं उठा रहा हूँ, मतलब मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मैं उठाऊंगा आपका, रखो अभी आप फोन, मतलब कुछ लोग आपको मजबूर करते हैं, टिल यू पिकअप द फोन, वॉट एवर यू आर डूइंग, बाथरूम में स्नान कर रहे हो, आई डोंट केयर, पिकअप द फोन। तो हमारे कृष्ण भी ऐसे हैं, एक व्याकुलता से बुला रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो और व्याकुल हो जाते हैं, फिर और मुरली बजाते हैं, फिर और व्याकुल होते हैं, फिर और सब बढ़ते हुए व्याकुलता से बजाते रहते हैं। और राधा रानी उधर आ नहीं सकते ना, वो रोका गया उसको, तो अंदर रखे बैठी, क्या आप दोबारा आके सासू से झगड़ा करेगी। तो कृष्ण कहते कि सुबल राधा रानी तो नहीं आने वाली अभी, अब मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, हरे कृष्णा मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो जब मैं मरूंगा ना तो मेरी ये गुंजमाला और मेरी ये मुरली उसको भेंट में दे देना, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं, फाइनल टॉक एकदम,
डेस्परेट।
तो सुबल को बोलते, सुबल बोलते डोंट वरी, ऐसा बात मत करो, मैं हुआ हूं ना, मैं किस लिए आया हूं, मैं कुछ करता हूं। बस सुबल मैं इंतजार करूंगा, और अगर तुम लेट आए और मैं मरा हुआ मिला तो मेरे ऊपर से माला निकाल के मुरली दे देना उसको, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, बड़ी आशा है तुम्हारे ऊपर। हाँ, इसे गिरकर छाती पीटकर बोल रहे हैं, यू कैन इमेजिन। सुबल गए, सुबल बहुत, सुबल का और उज्जवल दो भाई हैं, दो ग्वाल बाल हैं, वो कृष्ण और गोपियों के बीच के मीडिएटर्स हैं। कुछ मिलन नहीं हुआ तो मिलाने का काम भी कर देते हैं, और कुछ झगड़ा हुआ तो समझाने का काम भी कर देते हैं। दे आर लाइक इन बिटवीन ऑलवेज, यू नो, बफरिंग बफरिंग करते रहते हैं। सुबल जाता है ऐसा जावट के पास, घूम रहा है इधर उधर, थका हुआ दिख रहा है बहुत, कुछ ढूंढ रहा है ऐसा, और दरवाजे पे वो सासू मैया बैठी है। अरे सुबल क्या कर रहे है, बड़ो थको दिख रहे है, कहा चेहरा काला है, गो क्या हो गया तुम्हें, इतना चेहरा तुम्हारा उठता उतरा उतरा लग रहा है, थका थका लग रहा है, क्या हो रहा है और क्या ढूंढ रहे हो। सुबल बहुत होशियार है, बोलते है मैया मेरा बछड़ा खोया है, उसको ढूंढने आया हूँ, लगता है इधर ही गया था इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैया बोलती है अरे बहुत थक गए हो, बछड़ा ढूंढ रहे, उनके प्यास तो लगी होगी, जाओ मेरी भयू अंदर बैठी, जाकर उसको पानी मांगो, थोड़ा पानी वानी पियो और ढूंढ लो हमारे अंदर आ गया क्या तुम्हारा बछड़ा, उसको तो वही चाहिए था, उसको अंदर ही घुसने का वो प्लान कर रहा था कैसे घुस जाऊँ अंदर। मैया रस्ते पर डंडा लेके बैठी है, तो ऑफिशियली उसको अंदर भेजती है। तो तुरंत जाके राधा रानी को और ललिता सखी को सबको मिलते हैं, बोलते हैं मैं आ गया हूँ, वहाँ से मुरली की आवाज़ बार बार आ रही है ना, वहाँ से मुरली तो बज रही है, क्योंकि कॉल तो आ रहा है, आ ही रहा है, पिकअप नहीं हो रहा है ना। तो वो थे सुबल बताओ उनकी स्थिति कैसी है, तो सुबल ने बताया वो तो मरणासन्न हो गए, बोलते वो तो गुंजमाला और मुरली की आपको देने की बात कर रहे हैं, वो बहुत रोती है, क्या करे सुबल। तो सुबल कहते हैं आइडिया, अभी मैं बछड़े के बहाने आया था, तुम्हारे पास तो बछड़े बहुत सारे होंगे अंदर, तो मैं एक बछड़ा तुम ले लो, और तुम्हारा हमारा चेहरा सेम सेम है, तो मैं आप बन जाता हूँ, आप मैं बन जाओ, यानी कि मेरा धोती कुर्ता आप पहन लो और सुबल बन जाओ, और आपका लहंगा पहरा मैं पहनता हूँ और मैं राधा रानी बन के यहाँ बैठता हूँ। तो बोलते तीन समस्या है मेरे पास, राधा रानी बोलती, एक तो ये लंबे बाल हैं, उसका क्या करूँ। बोलते मेरा पेटा ले लो और बांध दो उसके अंदर, ग्वाल बाल की तरह सब बाल छुप जाएंगे अंदर। और दूसरा कहते मेरा आवाज़ जो है ना, वो लड़की का आवाज़ है ना, वो क्या करूँ उसका। और तीसरा है मेरा जो वक्षस्थल है बहुत उन्नत है, मैं बहुत युवा अवस्था में हूँ, उसको कैसे छुपाऊँ। तो तुम्हारा तीनों प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, एक बालों को पेटा में छुपा दो, और कंठ के बारे में तो खाली इतना ही बोलो, कुछ बोलो ही मत। और रही बात छाती की, एक बछड़ा उठा लो और छाती पर ले लो, ऐसा दो पैर यहाँ दो पैर यहाँ ऐसे पकड़ के ले लो, और मैं बन जाओगे बात तो मैंने क्या कहा है, बछड़ा ढूंढने को आया था। तो मैया बोलेगी अरे सुबल बछड़ा मिल गया, तो कहना अभी जा रहे हो, पानी पिया तुमने, बस ऐसे बोलना है आपको। तुरंत कुछ सखियां यहाँ आ जाती है, कुछ सखियां वहाँ जाती है, इनके कपड़े उतार कर उनको पहनते हैं, उनके उतार कर इनको पहनते हैं, दोनों को सेटिंग करके राधा रानी सुबल बनकर वैसे ही छाती पर बछड़ा लेकर घर के बाहर निकलते हैं। रास्ते में बैठी हुए हैं, क्या नाम उनका, जटिला माता। क्यों सुबल मिल गया बछड़ा, क्या बोली वो, पानी पिया तुमने, अभी जा रहे हो, जाते हैं निकल के। इधर सुबल अंदर बैठा है गोपी बनकर, राधा रानी बनकर, वो जाता है उधर, सुबल राधा रानी कोकिला बन, वहां पर ऐसे पड़े हुए कृष्ण दूर से देख रहे हैं, सुबल अकेला आ रहा है, मतलब फेल हो गया वो, राधा रानी को लाने में सफल नहीं हुआ, और जोर से रोने लगे, छाती पीट पीट कर बोले कम से कम सुबल को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, वो आएगा तो मैं जाऊँगा शरीर छोड़ के। तो सुबल आया, मतलब राधा रानी आई, और राधा रानी भी थोड़ी सी जरा थोड़ा सा खींच रही है, तो सुबल तुम अकेले आए, तुम भी कुछ बोल नहीं रहे, मतलब ऐसा दिखा रहे कि सुबल बहुत नाराज है, दुखी है, गया लेकिन असफल होके लौटा तो क्या बोलेगा, इसलिए वो शांत है, मुँह खोलेगा तो आवाज़ आएगी ना, शांत मतलब दुखी ऐसा दिखा रहे। तो कह रहे हैं अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, मतलब तुम राधा रानी को ले नहीं आ पाए, कुछ कोशिश करके तुम हार गए, ठीक है मैं मर जाता हूँ। तो तुरंत अपना फेटा निकाल के बछड़े को छोड़ देते हैं, अरे नहीं नहीं मैं आ गई हूँ। फिर कृष्ण एकदम खिल जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कोकिला वन में उनका बहुत लंबा विहार होता है, बहुत समय तक वो लीला करते हैं, भोजन करते हैं, भगवान श्रृंगार करते हैं, भगवान उसके अकेले के साथ राष्ट्र रचाते हैं उधर, सिंगल वन टू वन निवृत्त निकुंज लीला, प्राइवेट मोस्ट लीला, तब तक शाम हो जाती है, यहाँ पर पानी समाप्त हो जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं, यानी वो जो बना हुआ है तो वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, गोपियाँ कह रही है मैया पानी खत्म हो गया है, सुबह लाया था ना, अभी समाप्त हो गया है, हम जमुना किनारे जाए लेके पानी आने के लिए। हाँ जाओ जाओ राधा रानी को लेके जाओ। तो सुबल बना हुआ है ना राधा रानी, वो भी बीच में उसको करते हैं, वो पूरा सराउंड करके उसको मटके लेकर निकल जाते हैं। तब तक ये घूमते घामते जमुना जी के पास आ जाते हैं। उस समय जमुना जी भी वहाँ बहती थी नंदगांव में। आ जाते हैं तो जमुना किनारे पे सुबल राधा और कृष्ण को मिलते हैं और वहाँ पर फिर से एक्सचेंज होता है। राधा रानी फिर अपना वस्त्र पहनती है, सुबल अपना वस्त्र पहनते हैं और दोनों विदा करके एक्चुअल पानी भर के घर पर चले जाते हैं। तो ये हुआ आठवें स्वर का लीला। और एक बार भगवान उधर आंजनोक गांव में गए थे, अंजन बिहारी जी का गांव है आंजनोक, वो बरसाने से 4 किलोमीटर दूर है, छाता के रास्ते पर है। तो वहाँ मिलने का तय हुआ तो भगवान अपने मित्रों को लेकर वहाँ गए और आठवीं धुन बजाई। और राधा रानी का भी पता था कि उनको वहीं पहुँचना है, लेकिन उस दिन उनको मेकअप करने में देर हो गई, जो आमतौर पर औरतों के बारे में होता ही है ना। अभी मैं पुरोहित बन के शादी करता हूँ, वेट किसके लिए करता हूँ? दुल्हन आ रही है, आ रही है, अभी मेकअप चालू है, आ रही है, दूल्हा आके बैठा है, कब का, थोड़ा बहुत मेकअप करके आ रहा है। लेकिन दुल्हन का मेकअप बहुत लंबा चौड़ा होता है, 4 घंटे भी पुरते नहीं उनको। तो हम लोग अक्सर किसका वेट करते रहते हैं? दुल्हन आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही। तो वैसे इनका श्रृंगार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। उतने में उन्होंने आजनोक से मुरली बजा ली, आठवीं धुन, राधे राधे करके, तो कान में पड़ी। तो बोल रहे सखिया क्या कर रहे हो तुम लोग, कितना देर से मेकअप कर रहे हो, कब पूरा करोगे, जल्दी जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी मेकअप करने लगे, फिर आवाज आई राधे राधे मुरली से। बोले छोड़ो तुम लोग अभी, आई कैनॉट वेट एनी मोर। भागी वो, अभी आई कैनॉट वेट एनी मोर, इतनी व्याकुलता से पुकार रहे हैं। तो बरसाने से भागी, सीधे वो गांव में चले गई, तब उसका नाम आंजनोक नहीं था, बाद में पड़ा। तो भाग के आई तो कृष्ण को उसको देखकर बड़ा आनंद आया कि देखो कितनी उतावली होकर भाग के आई, हाउ ईगर शी इज टू मीट मी। लेकिन एक साथ में देखा कि आ गई और दूसरे साथ में उन्होंने देखकर उसको हंसे भगवान। एनी आइडिया व्हाई लाफ्ड? भगवान इतने हंसे, प्रेम से हंसे, मतलब अप्रिशिएटिव स्माइल। देखो भाग के तो आई लेकिन काजल लगाना ही भूल गई। बोले क्यों हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं, तूने तो काजल तो लगाया नहीं, पूरा मेकअप किया लेकिन काजल ही नहीं लगाया, पूरा अधूरा रह गया तुम्हारा श्रृंगार। तो राधा कहती है कि तुमने इतनी व्याकुलता से बुलाया तो क्या करूं, मैं छोड़ के आ गई, मैं भी भूल गई काजल लगाना, भूल गई हूं, ये भी भूल गई मैं, तुमने ऐसी पुकारा, जाऊं क्या वापस, लगा क्या हूं क्या? बोले नहीं, तुम अगर जाओगे तो मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मतलब तुम यही रहो, मैं तुम्हारा काजल जो है वो लगा देता हूं। तो भगवान ने वहां पर एक शिला थी, उस पर उंगली घिसी, उसमें से काजल पैदा हो गया। तो भगवान ने अपने हाथ से राधा रानी को काजल लगाया, काजल की रेख भगवान ने अपने हाथ से लगाया। तो वो शिला जो है वो आज भी वहां पर है, उसका नाम क्या है? कजरोठी शिला। ऐसी 2 शिला है वृंदावन में, एक नंदगांव के बरसाना के रास्ते पे है कजरोठी शिला, वो गांव का नाम भी कजरोठा है, कजरोठा गांव का नाम है। उधर भी एक कजरोठी शिला है जहां पर गोपियों ने घिसकर राधा रानी को काजल लगाया था और कृष्ण को भी काजल लगाया था, मेनली कृष्ण को लगाया था दूल्हा बनाने के लिए। तो वो एक शिला अलग है और एक आंजनोक गांव में जहाँ पर भगवान ने उनका घिसकर काजल निर्माण करके राधा रानी का अधूरा श्रृंगार पूर्ण किया था। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर भगवान की सेवा में हम लोग बहुत व्याकुल है, समझो वी आर वेरी ईगर टू सर्व कृष्णा, तो कभी कभी जब हमारी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे एक सेवा में कुछ कमी भी हो सकती है या कभी कुछ त्रुटि भी हो सकती है। लेकिन जब हमारे मन में प्रामाणिकता है और हम सिंसियरली भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान हमारे भाव को देखकर हमारी सेवा की कमी खुद पूरी कर देते हैं। तो राधा रानी को इच्छा थी कि मैं सबसे सुंदर श्रृंगार करके कृष्ण को नेत्रों को आनंद दूं, लेकिन भाव विभोरता में काजल लगाना भूल गई थी, एक प्रकार श्रृंगार में कमी रह गई, त्रुटि रह गई। तो भगवान ने उसके भाव को देखकर बड़े प्रेम से खुद काजल निर्माण करके उनका श्रृंगार पूर्ण कर दिया। तो हमारा भी कभी कुछ या हमारा छुटपुट होते रहते ना, डोंट वरी, जब तक प्रामाणिक भाव रखते हो भगवान आपकी सेवा को परिपूर्ण करके स्वीकार करेंगे। मराठी में क्या बोलते हैं, की गोड मानून पोटात घालून घ्या, आमच्या चुका गोड मानून पोटात घ्या असं म्हणतात ना मराठीमध्ये। उसका अर्थ यह है कि भगवान हम तो ऐसे ही है टूटे फूटे, लेकिन आपको बहुत चाहते हैं, हो सकता है हमारी सेवा में कुछ गलती वलती हो तो उसको मीठा मान के स्वीकार कर लेना, जस्ट एक्सेप्ट इट। हाँ, तो ये भाव हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारा है। तुकाराम महाराज, पंडरपुर के भक्तों जो है पंडर भगवान के, वो सब लोग ऐसे गरीब बेचारे भक्त हैं, उनके पास कुछ था ही नहीं कभी, कोई सिंपी है, कोई सांबर है, कोई गाय हाँकने वाला है, कोई घर की नौकरानी है, ऐसे उनके महान भक्त हुए हैं। तो वो सब गरीब थे, तो वो हमेशा कहते थे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, पंडर भगवान हमारा छाछ पी लो तो अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे कथा है पंडरपुर के भगवान की, बताएं आपको। एक माताजी थी, बहुत गरीब थी बेचारी, वो रोज ना एक आइटम है, उसका नाम है ताक पीठा। ताक पीठा मतलब आटा और छाछ मिलकर उसको मिक्स करके थोड़ा स्पाइस डाल के उसको बना देती, वो ताक पीठा बोलते हैं उसको। वो रोज लेकर ताक पीठा लेकर अपने घर से, पंडरपुर में ही अपने घर से चलकर विठोबा को जाके अर्पण करती थी, और विठोबा को उसके छाछ पर बहुत प्रेम था, मतलब वो ताक पीठा आइटम पर रोज पिलाती थी, रोज भगवान बड़े मजे से खाते थे उसको। एक दिन उसको बुखार आ गया, वो बुढ़ी भी हो गई थी बेचारी, और उस दिन बुखार आ गया उसको, तो 3 दिन वो नहीं आ पाई, बहुत बीमार थी वो। ठाकुर जी को रहा नहीं गया तो सीधे उठ के उसके घर पे चले गए, जहाँ पर उसका घर है। बोलते अरे तू आई नहीं, कुछ नाम है उसका याद नहीं आ रहा मुझे नाम, क्यों नहीं आई तू? आप देख तो सब जानते हो, आप देख रहे हो मैं बुखार में पड़ी हूँ, मैं बुढ़ी हो गई, मुझे चलने को नहीं हो रहा है। लोगों वो छाछ बना के तो रखा है, मैं तो रोज बनाती हूँ आपके नाम से, लेकिन पहुँचा नहीं पाई, देखो बना के रखा, पी लो उसको। तो ठाकुर जी ने वहाँ पर छाछ पी लिया, वो जो आइटम था वो। फिर वो जाने लगे तो बोलते हैं कि अभी ना मुझे लगता नहीं कि इस बुखार से भी अच्छी भी हो जाऊँगी तो आपके पास चल के आ पाऊँगी, अभी मैं बहुत क्षीण हो गई हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते हो आप, इधर ही रह जाओ, मैं रोज़ यहीं पर छाछ बनाती रहूँगी, आप पीते रहो। तो ठाकुर जी वहीं रह गए। तो एक विट्ठल जी का मंदिर पंडरपुर में और एक है, 5 मिनट के अंतर पर है, जैसे यहाँ से महावन है ना उतना ही है, मेन मंदिर यहाँ होगा तो वो ताकपीठा वाला महावन में है, और उधर समझो बहुत दर्शन में भीड़ हो गया, आपको दर्शन नहीं मिला तो लोग ताकपीठा वाले मंदिर में आके दर्शन करते हैं, ताकपीठे विठोबा ऐसा मंदिर है। तो कैसा है, एकदम गरीब लोग है ना, तो जो भी गलती है वगैरह भगवान को बोलते हैं कि स्वीकार कर लो हमारी सेवा। तो भगवान जब तक आपके हमारे हृदय में प्रामाणिकता है, सिंसियरिटी है, कपट नहीं है, सरलता है, तब तक आपके सेवा में जो भी त्रुटियां होगी उसको भगवान ठीक करके स्वीकार कर लेंगे, भगवान अपने आप ठीक करेंगे उसको। और एक तरीका भगवान ने बताया है, अगर कुछ सेवा में त्रुटि रह गई तो क्या करना चाहिए, बताओ, आप बताइए, आप सब लोग भक्त हैं। यस प्रभु जी बताइए, अगर सेवा में कुछ त्रुटि हो गई हमारी तो उसको परिपूर्ण कैसे कर रहे हैं? 8वें स्कंद में भगवान ने बामन का अवतार लिया बलि महाराज को कृपा करने के लिए, क्या ना, बलि महाराज ने 99 यज्ञ किए थे अश्वमेध, और पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति को इंद्र बनना है तो उस व्यक्ति को 100 बार अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, उसका क्वालिफिकेशन है, फिर वो कहीं ना कहीं इंद्र बनेगा, किसी किसी यूनिवर्स जहाँ पोस्ट खाली है वहाँ पर वो इंद्र बना दिया जाएगा। तो बलि महाराज को इच्छा थी कि इंद्र बनूँ, तो उन्होंने शुक्राचार्य के नेतृत्व में 99 अश्वमेध तो सफलता से पूरे किए थे कंप्लीट, और 100वां शुरू होने वाला था तो देवता लोग परेशान हो गए, अरे बाप रे अभी तो ये जबरदस्ती हमारे ऊपर आके बैठेगा, ऑफिशियली आके बैठेगा। तो भागे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेके गए विष्णु के पास, बोले डोंट वरी मैं आता हूँ, बामन ब्राह्मण बन के आता हूँ और सब इसका प्लान फेल कर देता हूँ। तो आप जानते हैं आगे जाकर उन्होंने पूरा 3 पग भूमि नाप लिया, 2 पग नापा तो सब खत्म हो गया, तो 3रा पग तो नापने को नहीं दिया उनको, जमीन बची नहीं। इसका मतलब ब्राह्मण को दान दिए बिना आपका कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, चाहे आप गर्भवती का करो, शादी का यज्ञ करो, गृह प्रवेश का करो, वास्तु पूजा का करो, अन्नप्रशन का करो, किसी भी 16 विधि का करो, यज्ञ में अगर ब्राह्मण को आपने दक्षिणा देकर भोजन करा के संतुष्ट नहीं किया, आपका यज्ञ कितना भी परफेक्टली किया होगा वो अपूर्ण है। तो इनका तो ऑफिशियली ओपनली असफल रहा 100वां यज्ञ, क्योंकि ब्राह्मण को प्रॉमिस किया हुआ दान नहीं दे पाया ना, वो सब कुछ परफेक्ट किया था शुक्राचार्य ने, लेकिन ये बात की वजह से 99 होने के बाद 100वां यज्ञ जो है डिस्क्वालिफाइड, तो ऐसा नहीं रोज 99 तो कहना, अभी थोड़ा सा इंद्र बना दो, ऐसा नहीं है। 100 पूरा करने के बाद ही होगा वो, 99 से काम नहीं चलेगा। लेकिन भगवान ने बलि महाराज को इतने वरदान दिए, भगवान बलि महाराज के समर्पण पर इतना प्रसन्न थे, क्या बताएं आपको। एक तरह से वो हार गए ना, सवे यज्ञ में खुद हार गए, लेकिन भगवान के लिए, भगवान को क्या इंपॉर्टेंट है क्या ये सब, ये 99, 100, 101। भगवान तो भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। को यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, मूढ़ो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयो हो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। वाह क्या श्लोक है। मूर्ख वक्ते जो बोल नहीं पाता है वो विष्णु को विष्णवे, विष्णु कुछ भी बोलता है, विष्णाय एनीथिंग। जो धीर है वो पढ़ा लिखा है वो बरोर विष्णु विष्णवे ऐसा उच्चारण करता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, उभयो, दोनों, ये भगवान के लिए समान है। जब तक प्रेम से पुकारा जाता है, भगवान उसमें भेदभाव देखते नहीं कि तोतला बोल रहा है ये अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा उच्चारण कर रहे हैं। दोनों के भाव, भावग्राही जनार्दन, वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने उनका समर्पण का भाव ग्रहण कर लिया, समर्पण स्वीकार भी कर लिया, प्रचंड आशीर्वाद भी दिए। लेकिन भगवान जानते थे कि सौ यज्ञ क्यों करना चाहता था, क्योंकि उसको इंद्र बनना था। तब तक तो उसको इंद्र बनने की इच्छा भी समाप्त हो चुकी थी, भगवान का दर्शन हुआ, इतनी कृपा हुई, किसको इंद्र बनना है। लेकिन भगवान ने सोचा कि मेरे लिए यज्ञ किया और मैंने इसको इंद्र नहीं बनाया तो लोगों का मेरे ऊपर विश्वास समाप्त हो जाएगा। तो जाते जाते क्या बोले शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य जी महाराज आप इनके पुरोहित हैं, कुछ भी करो आप, सवा यज्ञ सफलता के कैटेगरी में आना चाहिए। जो करना है मंत्र जप करना है आपको, क्या विधि आपको पता है, आप पुरोहित हो, 100वां यज्ञ मुझे सफल चाहिए क्योंकि मुझे उसको इंद्र बनाना है। 36,000 साल सुतल लोक में रहने के वरदान के बाद मैं उसको इंद्र बनाऊंगा, उसके लिए आपको यह पूरा करना है। तो शुक्राचार्य ने वहां पर 8वें स्कंद में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भगवान जब आपके पवित्र नामों का कीर्तन होता है तो यज्ञों की सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और यज्ञ सफल हो जाता है। दिस इज अ गोल्डन लाइन। सुखदेव जी महाराज, शुक्राचार्य जी हैज सेड, दैत्यों के गुरु है वो, देवताओं को गुरु भी नहीं है, दैत्यों को आगे बढ़ाने वाले गुरु है वो। लेकिन उन्होंने ये पते की बात बताई है कि हे भगवान जब आपके पवित्र नामों का कीर्तन होता है तो यज्ञ में जितनी त्रुटियां हैं, एक नहीं सब त्रुटियां परिपूर्ण हो जाती है और यज्ञ सफल हो जाता है। तो वहां पर शुक्राचार्य ने हरिनाम संकीर्तन किया है और 100वां यज्ञ जो है उसको पूरा कर दिया है और उसके बाद में बलि महाराज इंद्र भी बने हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एंड ऑफ आवर लेक्चर, टेक होम मैसेज कि हमारे जीवन में हम लोग कुछ भी करेंगे ना, कितना भी प्रामाणिकता से करेंगे, सिंसियरली करेंगे, हार्ड वर्क से करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, मेटिकुलसली करेंगे, फिर भी हमारे हाथ से कलयुग में गलतियां हो ही जाती है, होगी ही और होती ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारे यज्ञ में जब हम यज्ञ करते हैं, हम जानते हैं ना कि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं कि हम मंत्र उच्चारण करके अग्नि निर्माण करें, मंत्राग्नि नॉट पॉसिबल जो पहले युग में करते थे। हमारा स्थान भी गलत होता है, हमारी वस्तु भी गलत होती है, उसके अंदर कबूतर ने या क्या कौवे ने कुछ टट्टी की होती है, वो लकड़ी कभी कभी आ जाती है उसके अंदर, या हमारी वस्तु सब ऐसे ही इनऑर्गेनिक गलत वस्तु आ जाती है, घी भी अच्छा नहीं मिलता है, आप जो भी मार बोलो सब कुछ अपूर्ण हो सकता है। फिर भी टूटा फूटा यज्ञ तो हम करते ही हैं, है ना, करना ही पड़ता है, हमारा धर्म है वो ब्राह्मणों का। तो हम लोग शुरुआत कीर्तन से करते हैं, बीच बीच में ब्रेक ले लेकर 50 बार कीर्तन करते हैं और एंड में भी फाइनल जोरदार कीर्तन करते हैं, दूल्हा दुल्हन को नचाते हैं उसमें। क्यों करते हैं, भगवान नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन भगवान नाम यज्ञ की, होम की, हवन की सारी त्रुटियां बैलेंस कर देता है और यज्ञ को सफल बना देता है। नहीं तो कलयुग में सफल करने का कोई चांस ही नहीं है, कोई पुरोहित भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं, कोई स्थान भी नहीं, कोई मंत्र उच्चारण भी नहीं है। लेकिन हर चीज में जो भगवान के आंजनों की लीला में हम सीखते हैं, आंजनों का नाम क्यों पड़ा कि भगवान ने नेत्र का अंजन निर्माण किया उधर और राधा रानी को नेत्र का अंजन लगाया, इसलिए आंजनोक, अंजनपुर, और ठाकुर जी का नाम अंजन बिहारी उस गांव में है। तो वैसे ही कहा जाता है कि भगवान के प्रतिनिधि गुरु जो है वो हमारे नेत्र में जो अज्ञान की त्रुटियां हैं उसको ज्ञान का अंजन लगाकर परिपूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारी सेवा में जो त्रुटि है वो भगवान नाम लेकर हम पूरी कर सकते हैं। बोलो सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।